ये दिन की बातों को सुनने के लिए कारगुजारी बयान करने के लिए तो करीब आना, और दिन को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए बोलो दूर से दूर जाना। अब तुम यहाँ से ये समझते हो कि सीधे चार महीने हम चले जावे, तो इतनी जल्दी मत करो, पहले तो करीब आ जाओ। तुमको चार चार महीने का भी हम मौका देंगे इंशाल्लाह, जाओगे ना? कौन कौन जाएगा? देखो शायद ऐसा तैयार, लेकिन थोड़ी देर के बाद कारगुजारी हो जाओ, इसके बाद अपने तुम्हारी तरफ पर तो कितनी जमातें चली? दो, दोनों जमातें आगे पूरी। कौन कौन चला था पहली जमात में, जरा हाथ उठाने कौन कौन है? एक दो तीन चार, चार की जमात थी, बाकी चार है? अच्छा हमने ये तो सुना है कि एक पर एक फ्री, हमारे यहाँ एक दुकान है ना, तो बोले एक पर एक फ्री मिलेगा, पर पब्लिक में तो ऐसा नहीं है कि चार हाजिर हुए नाट की कारगुजारी हो जावे। चलो और दूसरी जमात का है, एक दो तीन चार पांच, आप कितने थे? अच्छा माशाल्लाह, और हर हल्के के दो दो तीन तीन जिम्मेदार भी आ गए। देखो भाई दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये जो हमारी जोनों की जमात के जरिए से कस्म पुरुष इंसानों की फिक्र और मुलाकात का जो निजाम है, ये हमारी मगफिरत का सामान है। जहाँ 5-10 मुसलमानों के मकान हो और जहाँ मस्जिद मदरसा भी ना हो और कोई माहौल भी ना हो, ऐसे लोगों को जाकर ईमान यकीन की बात करना, इनको नमाज पर आमदा करना, इनको अपनी आखिरत की बातें बतला कर मरने के बाद की जिंदगी की फिक्रें कराना, ये बहुत बड़ी नेमत है। दूसरा, जब हमारी जमातें पैदल चलती है जोनों में, तो हमारे जिले के अहवाल हमारे सामने आते हैं। बाजे मरतबा हम क्या समझते हैं कि माशाल्लाह नवसारी में इतनी मस्जिदें हैं, अजान हो रही है, नमाजें हो रही है, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, औरतों की जिंदगी में पर्दा है, मर्द माशाल्लाह शरी लिबास और शरी चेहरे के साथ है, तो हम मुतमईन हो जाते हैं कि भाई हमारा पूरा जिला ऐसा ही है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कड़ोदरा चार रास्ता सूरत से 16 किलोमीटर दूर है। दो तीन साल पहले एक मस्तूरात की जमात आई। जब वो जमात की 3 दिन मस्तूरात के पूरे हो गए, तो वो हलके वालों को हमने बुलाया जिस हलके में ये जमात ठहरी थी और जिनके घर में ये जमात ठहरी थी। हमने पूछा भाई क्या अमल हुआ, क्या कारगुजारी है? बोले इसमें से 3 बहनें ऐसी थी जिनको वुजू करते भी नहीं आता था। 3 बहनों ने ये कहा कि हमने पूरी जिंदगी में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी। फिर आप लोगों ने क्या किया? तो बोले हमने इनको पूछा कि भाई आप कड़ोदरा में रहते हो और वहां पर भी मस्जिद मदरसे अजान है, फिर भी तुम नमाज नहीं पढ़ते? बोले हमारे शोहर हमको भैंसों की खिदमत में लगा दिया है, सुबह से शाम तक भैंस को चारा खिलाना, दूध निकालना, उनकी सफाई करना, उसी के अंदर हमारी जिंदगी गुजर रही है। कितने साल से आप यहाँ आए हो? है दूसरे इलाके के। कितने साल से आप हमारे यहाँ कड़ोदरा में आए हो? बोले 40 साल हो गए। ऐसे दोस्तों बुजुर्गो, जब मैं और आप जोनों में चलेंगे तो ये अहवाल हमारे सामने आएंगे, और जब हालात आएंगे तो आदमी को फिक्र होगी। अभी हम आलीपुर खांबिया में अभी मदरसे का जो सफर था दो एक महीने पहले, एक जमात हमारे गुजरात की आई मिलने के लिए। उस जमात के तमाम साथियों की मुलाकात करने के बाद अमित साहब थोड़े रुक गए और बाकी साथी जाने लगे, तो अमित साहब ने यूं कहा कि मौलाना वो जो 60 साल के साथी जा रहे हैं वो पहली मर्तबा 41 साल के बाद पहली मर्तबा मस्जिद में दाखिल हुए। अब उनका जो कहने का अंदाज ये था कि हमने फिक्र नहीं की तो इनकी 41 साल तक की नमाज, रोजा, जकात, हज और पता नहीं कितने कितने अल्लाह के अहकाम टूट गए और कैसी जिंदगी गुजार करके इन्होंने अपना वक्त गुजारा, अल्लाह के रास्ते में गए, इनकी तशकील हुई, इनको आमदा किया, तो अब इन्होंने यूं बतलाया कि 41 साल के बाद पहली मर्तबा में मस्जिद में हाजिर हुआ। बहुत साल पहले हम लोग पंजाब में गए, पंजाब में एक साल की जमात थी जिसमें छोटा भाई जब पानोली के थे वो अमीर थे, मैं भी इनके साथ हो गया साल लगाने के दरमियान में। तो हमने देखा कि दो नौजवान चिल्ला लगाने की नियत से आए, 86 की बात है, पंजाब के अंदर एक दिन की तश्कील बहुत मुश्किल थी। अब ये दोनों नौजवान आए और आकर कहने लगे कि भाई हम चिल्ला लगाने के लिए आए हैं। तो हमने बैठकर इनको पूछा कि भाई आपकी तश्कील किसने की, यहाँ तो कोई एक दिन लगाने के लिए तैयार नहीं, पूरा एक उमूमी माहौल ये बन चुका है कि मुसलमान दुनिया में है ही नहीं, 47 के फसादात के अंदर सब के सब खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक देहात के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ दिन पहले हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, हम दोनों भाई गांव में थे, गांव वालों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि भाई इनको हम जला देवे। जैसे आज तक हमारे गांव के अंदर जितने मुसलमान 47 के बाद जिनका इंतकाल हो गया हम उनके साथ वही मामला करते। ये दोनों नौजवान ने यूं कहा कि भाई साहब हमने देखा चंडीगढ़ के अंदर मुसलमानों को जलाते नहीं, मुसलमानों को मिट्टी के नीचे दफन करते, और गांव में कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं था। तो ये दोनों नौजवान ने यूं कहा कि आप इंतजार करो, हम कहीं से आलिम ढूंढ करके आते। ये दोनों भाई निकले अपने छोटे से देहात से कि भाई किसी जानने वाले आलिम को बुला कर लावे ताकि जनाजे की नमाज पढ़ी जावे और इनको सही तरीके से दफन करें। बोले हम तलाश करते गए, तलाश करते गए, काफी तखीर हो गई। अब गांव में तो क्या होता है कि बड़े बुड्ढे होते हैं, दो चार घंटे इंतजार करने के बाद एक बड़े में आकर कहने लगे इन छोरों को क्या पता चले कि क्या, हमने तो आज तक यही किया है। अब उन्होंने हमारे वालिद को जला दिया, बोले वो जलाकर आ रहे थे और हम किसी आलिम को लेकर उस गांव में दाखिल हो रहे थे, हमने इनको देखकर पहचान लिया कि इन्होंने हमारे वालिद को जला दिया। फिर वो दोनों रोते रोते कहने लगे, फिर हमारे दिल में अल्लाह ने बात डाली कि अगर हम भी इस तरीके से जहालत के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो कल हम भी मर जाएंगे तो हमारी औलाद भी हमको जला दे, इसलिए हम तुम्हारे पास आए चिल्ला लगाने के लिए, हमको नमाज सिखाओ, जनाजे की नमाज सिखाओ, मुसलमानों के अहवाल बतलाओ, मुसलमान अपनी मैयत के साथ क्या मामला करता है वो बतला। जब आदमी चलेगा फिरेगा तो उसके सामने अहवाल आएंगे। हम अभी खुशफहमी में हैं कि माशाल्लाह हम जैसे दीनदार है या हमारे इलाके में नमाज रोजा जकात है तो पूरे हमारे इलाके में ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं। बल्कि ये जो हमारी पैदल जमाती जो जा रही है वो अहवाल बतलाएगी तो हमारा ये पूरा मजमा फिक्रमंद होगा। हमें पता नहीं दोस्तों बुजुर्गों कि किसकी हिदायत अल्लाह पाक किसकी तरफ से देंगे। हिदायत के असबाब तो अल्लाह ही पैदा करते। एक सहाबी ने अल्लाह के दिन की मेहनत में गए और किसी ने बरछा मारा और दुनिया से रुखसत हो गए और इतना कहकर गए कि काबा के रब की कसम में तो कामयाब हो गया। इनका इतना जुमला मारने वाले ने सुना, उसने मुसलमान सहाबी को पूछा कि भाई ये तुम्हारा भाई दुनिया से रुखसत हो गया, न खा सकता है न पी सकता है न बीवी बच्चों के साथ रह सकता है, इन्होंने जो दावत दी काबा की रब की कसम में तो कामयाब हो गया, वो कामयाबी कौन सी है? अब वो मुसलमान ने दावत दी, वो सहाबी रजी अल्लाह तआला ने कहा ईमान और इस्लाम को और अल्लाह के कलेमा को दुनिया में पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जानो माल की कुर्बानी लगाई और इसी एलाए कलिमतुल्लाह की निस्बत पर अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी, हमेशा हमेशा के अल्लाह पाक इनको जन्नत देगा। और मारने वाले कहने लगे अगर इतनी सी जिंदगी पर इतनी बड़ी जन्नत का वादा है तो मैं भी इसमें दाखिल होने के लिए तैयार हूँ। तो बाजे मरतबा हमारा चलना फिरना, किसी से मुलाकात करना, किसी को समझाना, ये उस बस्ती के लिए हिदायत का जरिया बन जाता है। दूसरी हमें इस बात की फिक्र आती है जैसे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह पाक ने फरमाया लअल्लक बाखिउन नफ्सक, ए नबी जी अगर ये लोग ईमान में दाखिल नहीं होंगे तो क्या आप अपने आप को घुला दोगे? जब मैं और आप हमारे इलाकों की बेदीनी को देखेंगे तो हमको एक फिक्र पैदा होगी, एक अंदर कुड़न पैदा होगी, फिर उसके असबाब अल्लाह पाक की तरफ से मुहैया किए जाएंगे। जब आदमी एक कैफियत के साथ चलता है और उसके अंदर एक कुड़न फिक्र हो जाती है तो फिर अल्लाह पाक उसके जरिए से काम लेते हैं। ये जो अजान का मसला आया था कि भाई लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलावे, तो राय कायम हो रही भाई आग जला दी जाए, ब्यूगल बजा दिया जाए, लेकिन कोई मशवरा नहीं हुआ। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु फिक्र के साथ अपने घर में गए कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक में एक बात आई है कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलावे। इसी फिक्र के साथ सोए, अल्लाह पाक ने इनकी फिक्र की बुनियाद के ऊपर फरिश्तों के जरिए से अजान के कलेमात सिखलाए। अजान देने वाले तो हजरत बिलाल थे, लेकिन इनकी फिक्र के ऊपर जब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और आपने पूरा ख्वाब पूरे अजान के कलेमात सुनाए, अल्लाह के नबी ने कहा कि हजरत बिलाल को ये कलेमात सिखला दो, और हजरत बिलाल से कहा कि ऊंची जगह आप अजान दे दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अजान दी तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अपने चादर के साथ आ गए और आकर अर्ज किया अल्लाह के नबी यही ख्वाब मैंने भी देखा है। तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कोई बहुत मशहूर सहाबी नहीं थे जिन्होंने पहला ख्वाब देखा, इनका नाम अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सबकत ले गए, अब कयामत तक जितनी भी अजान होगी किसके नामा अमल में होगी? वो सहाबी। ऐसे मैं और आप भी देहातों में कसम पुरुष लोगों में हमारे भाइयों की पैदल चलकर जो हमने मुलाकातें किए, अब उस पर अगर किसी के दिल को अल्लाह ने कबूल कर लिया और किसी ने वह नमाज अजान को जिंदा कर दी, इनका कलमा सही हो गया, हमारी बरकत से अल्लाह पाक ने इनको दीनदार बना दिए, तो इनकी कयामत तक की नस्लों में जितना दीन आएगा बोलो किसके हिस्से में आएगा? जो ये पैदल चले, हम इसको मामूली न समझे कि इसमें क्या होगा। हालांकि हमारे 16 हलके हैं और अगर आपके 16 जोन है तो पहले एक वक्त था कि हमारी 3 जमातें चलती थी, मालूम है, चार महीने पहले चिल्ले चिल्ले के तीन जमा के चलते थे, फिर आखिर में दो जमाते चलनी हुई बारिश हो वगैरह की वजह से। इस साल हमको कहा गया कि कम से कम एक जमात चलनी तो दो चाहिए, दो राउंड की, लेकिन कम से कम एक जमात तो चले। हमारे जोन कितने हैं वो तो अभी कम करके चार बनाए होंगे, पहले कितने थे? चार ही है, सात थे। हाँ पहले सात थे, तो जमाते दो राउंड की 14 चलनी चाहिए। आपके सामने अहवाल आवे, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से काम मिला है काम, और इसी रास्ते से तलाश करते करते अगर मैं और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फिर अल्लाह पाक हमारी मेहनत के नतीजे पर उन बस्तियों में दीन को दाखिल करेगा। आपने सुना होगा गुज़िश्ते एक जमात ब्राजील जाकर आई, कोई रहबर नहीं, कोई इनके पास भाई दो साथ यहाँ चले जाओ दो साथ यहाँ चले जाओ, फजर से जोहर तक फिर एक जगह मिलते थे पार्क में। भाई क्या हुआ? बोले कोई मुसलमान नहीं मिला। बोले कोई बात नहीं, फिर खाना खाने के बाद फिर दो जमाते बनाई, भाई एक उत्तर में जाओ एक दक्षिण में जाओ, एक पूरब में जाओ एक पश्चिम में जाओ, फिर एक आध मिल जाता था, कभी दो मिल जाते थे, कभी कोई एड्रेस देता था वहाँ मुसलमान की होटल है, फिर वहाँ जाते थे तो बोले ये तो क्रिश्चियन की है, फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़े। यूं करते करते यहाँ आदमी की जमात सुबह से रात तक तलाश करते करते पूरे ब्राजील के चार महीने में 850 या 950 आदमी की मुलाकात की, मेहनत की, तलाश की। अब जिनके साथ इन्होंने मुलाकातें की वो ऐसे खुश खुश हो जाते थे और यूं कहते थे कि ये तो हमारे लिए ईद का दिन, जब मैं और आप चलेंगे तो जब पता चलेगा कि वो हो मुसलमान है 40 साल 20 साल से हमारे इलाके में रहते और इनको कलमा भी याद नहीं, कितने जुमा इनके हाथ से निकल गए जिन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ी। अब वो जो कैफियत और अंदर की एक फिक्र होगी, फिर आदमी उसको दुआ में लेगा, फिक्रों में लेगा, मशवरे में लेगा, फिर अमल में लेगा और फिर वहां जमाते भेजेगा, तो फिर हमारी इस मेहनत के नतीजे पर अल्लाह पाक इनकी जिंदगियों को बदलेगा। और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अगर 1000 आदमी हो और एक आदमी बेनमाजी और बगैर दीन का हो, इन 999 की जिम्मेदारी है कि सब मिलकर उस पर मेहनत करके उसको नमाजी और दीनदार बना दे। और अगर एक दीनदार है और 999 आदमी बेदीन है तो उस एक आदमी की जिम्मेदारी है कि मेहनत करके इन 999 पर मेहनत करके इनको दीनदार बना दे। ये जो हमारी कारगुजारी का अमल है इसके जरिए से एक तो फिक्र उजागर होगी, काम महफूज होगा, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने का ये अमल है कारगुजारी वाला अमल। आपके जमाने के अंदर एक एक अमल की कारगुजारी होती थी, सोए में रूमी चले और कूबा में अल्लाह के नबी मौजूद है तो पूरी कारगुजारी सुनाई, अल्लाह के नबी में निकला, चारों तरफ से लोगों ने मेरे को घेर लिया, मैंने कहा मैं तीरंदाज हूँ, फिर हमने मुसालियत कर ली, जितनी मेरी जायदाद जो कुछ था वो सब ले लो और मेरे को हिजरत करने की इजाजत दे दो, तो मैं हिजरत का फरीजा अदा करके आया हूँ और उसके मुकाबले के अंदर मैंने अपने तमाम जायदाद इन लोगों को हवाले कर दी। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू याहिया तुमने नफे की तिजारत की, और अल्लाह पाक की तरफ से आयत उतरी वमिन अन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिही, तो गोया कि ये हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी का अमल है। इसलिए हमारी जो जमाते चली है वो भी हमारी कारगुजारी पूरी बतलाएगी। उसमें ये है कि जमात हमारी कहाँ की थी, दूसरा कौन से जोन में चली, तीसरे आपके साथ कितने साथी थे, उनमें से चार महीने वाले और चिल्ले वाले कितने थे, कितना पैदल चले, आप लोगों का कयाम कितना हुआ कहाँ हुआ, अगर अजान नमाज आपकी बरकत से कितनी जगह जिंदा हुई, कितने लोगों को कलमा सिखलाया, कितने लोग आपके साथ चले, कितने आपके तालीम में, आपकी नमाजों में, आपके साथ रहबरी में, जिन्होंने जितना वक्त लगाया उसकी कारगुजारी हो जावे। और यहाँ आप उसमें से उन देहातों में जहाँ चले उसमें से यहाँ कितने आदमी को लेकर आए, ये थोड़ी सी कारगुजारी सुना दो ताकि सबके सामने पूरे जिले के अहवाल आ जावे। ठीक है, इंशाल्लाह आ जाओ, पहली जमात आ जाओ। लोग कुर्सी के लिए तो लड़ते नहीं, लड़ रहे पर आपके लिए तो कुर्सी रख लीजिए।
हमारी
आप तो बराबर बोलो, ये आवाज कम करेंगे।
हमारी जमात नानंग पेड़ा से चले,
आपकी जमात थी
नवसारी की जमात।
अच्छा, और कहाँ चली?
नानंग पेड़ा।
क्या एक मतलब इस्तेमाल हुआ तो वही ना, यहाँ बहुत हाफिज़ कुरान है। सही बात है।
26 बंजर बस्ती की भी 7 आबाद बस्ती और हमने वहां से पैदल चले थे, ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर चले थे और कम से कम मेरे तो कौन सी बस्ती में पहुंचे। पहले हम यहाँ से नानक पेड़ पहुंचे,
उनकी कारगुजारी और कितने मुसलमानों के घर है
वहां पर, 200 मकान है और
कितनी बस्तियां, 24 में
26 बस्ती बन जाएगी, 7 आबाद बस्ती,
7 आबाद और 26 ये गोया के 33 बस्तियां है
जी।
अच्छा, जहाँ आबाद थी वहाँ कहाँ खेलते थे?
वहाँ मस्जिद में खेलते,
7-7 बस्तियों में। कितने कितने दिन खेल रहे?
अमुक बस्तियों में जैसे काम जैसा 10 दिन बैठे थे
एक मस्जिद में, 10 दिन
वो बहुत, जैसे नानंद पेड़ा है वहाँ 9-10 दिन और ऐसे आजू बाजू देहातों में जाते थे, देहातों में 30 किलोमीटर ऐसा जाते थे मेहनत करते
थे। ये 7 बस्तियों में कितने दिन खेल रहे थे? एक बस्ती में 9-10 दिन खेल रहे तो 7 बस्ती मिलाकर कितने दिन
खेल रहे? आबाद बस्तियों में जैसे ऐसी बस्ती है जैसे नानंद पेड़ा जैसे तो उसमें यानी कि 8-9 दिन, बाकी
आगे आगे दूसरी बस्ती में
3-2 दिन ऐसा।
टोटली ये 7 आबाद जगह पर आपका कितना वक्त गुजर गया?
ये हमारा
पूरा नंबर नहीं लग गया, कितने दिन लगे?
टोटल तो 40 दिन लगे।
ये 7 जगह आबाद जगह पर कितना लगा?
आबाद जगह पर जैसे ये है तो ऐसे देहातों को भी कवर करके देने का वो भी लोगों को सोचा
कितना लगा, बस इतना जाता तो 20-25 दिन 15-18 दिन
लग गए।
अच्छा, और क्या मेहनत हुई बच्चों?
आबाद बस्ती में जैसे घर घर की मुलाकात है, तश्किल है, पिछले 4 महीने की वो करते थे और जो देहातों में ज्यादा से ज्यादा यानी कि कम से कम 5 मकान के नीचे थे, 5 मकान थे, 4 मकान थे वहाँ जाके यानी कि 2 नमाजों को यानी कि वहाँ करते थे, असर मगरे नमाज जैसे दावत देते।
आबाद बस्तियों में रहकर बंजर बस्तियों में जाते थे वहाँ जाकर मेहनत करते थे और आबाद बस्तियों में घर घर की मुलाकात करते थे। कितनी जमातें बनी वहाँ से 4 महीने की?
4 महीने की जैसे इरादे किए थे और हमारे साथ तो नहीं निकले लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने वसूली दी थी,
यानी उधार धंधा देकर आए,
साथ में नहीं आए,
यानी उधार धंधा करके आए ना आप लोग? उधार तो करते हो यहाँ पर दुकानों में? उधार करते हो आपके यहाँ है आगे रोकड़ा काले उधार ऐसा बोर्ड लगेला है तो ये क्यों उधार धंधा करके आए? आपका क्या धंधा है, क्या कारोबार है? उधार करते हो, अगर उधार करे तो बच्चे क्या हो गए, भूखे मरे। पर तबलीग वो आपने उधार करके आए, इतना बड़ा दिल है। बोले दुनिया तो फना हो जाने वाली चीज है, वो तो भले नकद हो जाओ, बाकी बड़े दिल के साथ अपने आखिरत का धंधा तो उधार करो। ऐसा था तो रोकड़ा लाना चाहिए ना,
दिल के साथ भी आया।
चलो तीन दिन की कितनी जमातें निकाली?
तीन एक जमात,
तीन दिन की। और घर घर की मुलाकात हुई,
घर घर की मुलाकात हुई,
और सब जगह मस्जिद आबाद थी, है ना?
वो जो सात बस्ती थी,
मैं सात की बात करता हूँ अभी तो, अभी 24 पड़ता भी हम आएंगे 26 पड़ता, तो ये तो ठीक है ना। अब 26 बस्तियों में क्या काम हुआ हो मेरे को बताओ।
26 बस्तियों में जैसे पांच
क्या मस्जिद मदरसा नहीं
रहता, वहाँ जाते थे,
वहाँ कहाँ कायम करते थे, तो
वो मस्जिद पे रह के वहाँ जाते थे। 30 किलोमीटर कम वाले थे,
ये 26 बस्तियाँ पांच मकान से कम थे, और पांच मकान से ज्यादा वाली कितनी बस्तियाँ थी इसमें? एक भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी तुम्हारे वहाँ या तो आबाद मस्जिद मदरसे वाली बस्ती है, और या तो पांच मकान से कम वाली बस्ती है। नहीं, जहाँ गई वहाँ उसके बीच में पांच से ज्यादा मकान की कोई बस्ती है ही नहीं। अच्छा, तो फिर कोई और, ये तो आबाद में रहकर आए, हमको तो असल तो आबाद में तो हमारी मेहमान जमाते आपकी तीन दिन की जमाते तो जाती हैं। हमारी जोन की जमात से मुराद ये है कि जहाँ पांच मकान या उससे ज्यादा मकान हो और मस्जिद मदरसे न हो, हम उसको पहला टारगेट बना रहे। अब उसके जिमन में अतराफ में कोई ऐसी बस्ती है कि जहाँ मकान दो तीन चार है, वहाँ मुलाकातों का निजाम होगा। अब ये तो वही बस्तियां साथ थी कि जहाँ हमारी मेहमान जमाते भी जाती है और आपकी तीन दिन की जमातें भी जाती है, तो ये तो हमारा मौजू है ही नहीं है भाई। जोन की जमात तो आपने चिल्ले की बना डाली और जोन का नाम दे दिया, ऐसा नहीं था अजी साहब। चलो तो फिर उन 26 से 26 देहातों में मुलाकात हुई, पैदल जाते थे,
पैदल भी हम चले,
गाड़ियां लेकर गए थे
कभी कभी जाते,
नहीं नहीं आप बाइक वगैरह कुछ लेकर गए थे, तो वहां से रेबर कर ले लेते थे। तो वहाँ क्या मुलाकात हुई वो बतलाओ, सुबह से शाम तक जाते थे। अच्छा, असर मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ते थे, किस कहाँ पढ़ते थे? ये जो तीन चार पांच मकान थे उनके घरों में, इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ आप अजान नमाज शुरू करवाते, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ करते थे? तीन मकान तो छह बालिग मर्द हुए ना,
एक मकान 30 किलोमीटर हो तो एक मकान
वालों को भी तरकीब देते, लेकिन दो तीन मकान वालों को तो हम जमात के साथ नमाज पढ़ाने की कोई तरकीब नहीं थी।
वहाँ उनको
आप शुरू करवा देते, नहीं कहा नहीं शुरू करवा देते, जैसे ये दो तीन खम्भे लगा कर पर्दे डालकर भाई तुम्हारी जगह मस्जिद है, नमाज तो शुरू कर दो, अजान नमाज तो होती ना। हमारे ये इन बस्तियों में सबसे पहले जो जिंदा करना है वो तो अजान नमाज को जिंदा करना, इसलिए कि 100 मकानों की आबादी है, इसमें 4-5 मुसलमानों के घर है, 95% तो वो लोग होंगे। अगर हमारे अजान नमाज को भी हम कायम नहीं करेंगे तो इनको वो माहौल तो मिलेगा नहीं, और वो माहौल जो दूसरा मिलता रहेगा तो वो बच्चे उसी को देखकर परवान चलेंगे। और अगर आपने अजान नमाज को जिंदा कर दी تو اذان کی آواز ان بچوں کے کانوں میں گونجے گی. نماز کو یہ بچے دیکھیں گے, اس لیے کہ مسجد ہے نہیں, مدرسہ ہے نہیں, مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے. ان کے لیے تو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اس طرف منتقل کرنے کے لیے پہلا عمل اذان نماز, اور اس کے لیے کوئی کامن جگہ ہو, کسی کے گھر میں تو لوگ آئیں گے نہیں. دیہاتوں میں عام طور پر پانچ مکان بھی ہوتے ہیں نا, تو پانچوں کے آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ ہی ہے. آپ کسی ایک کے مکان میں نماز کو زندہ کرنے کی بات کرتے تو دوسرا اس کے گھر نہیں آئے گا. آپ کو کامن جگہ پر, اور بہت سی جگہ ہوتی ہے بھائی, یہ پورا فریا ہے, پانچ مکان ہے, اس کے سامنے کوئی ایسی جگہ ہے کہ بھائی ایک درخت کے نیچے جو کامن جگہ ہے آپ اپنی نماز کی جگہ منتقل کر دیتے, پھر وہاں اذان نماز دیتے, تو پانچوں گھر کے تمام بالغ مرد آ جاتے. اور یہ بہت بڑا عمل ہے. جس بستیوں میں اذان ہوتی ہے ان بستیوں کو اللہ پاک شیطان کے تسلط سے محفوظ کر دیتے. اور اذان دعوت تامہ ہے, یہ اذان کے ذریعے سے شیطان بھاگتا ہے. آپ بھی دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے, جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان اپنی ہوا کو خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے, نماز میں واپس آ جاتا ہے. تو کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوا. اچھا, اور وہاں کے احوال کیا تھے جہاں آپ ملاقات کرتے تھے, ان لوگوں کے دینی احوال کیا تھے؟
گڑت گئے تھے, گڑت میں وہ بس کی ملاقات کری, ہل پہ رہتا تھا ایک ہی مکان, تو وہ عورت کے ساتھ رہتا, ان کے بچے کا نام بھی شیلیش نے ایسا تھا. پھر ان کو ہم نے بلایا بھی تھا دو بار گئے, پھر وہ ایک بار آیا تھا مسجد میں لے کے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ. ان کے بچوں کے بارے میں ہم نے بچوں کو مدرسے کے لیے آپ کچھ کرو, بولا لیکن پھر ہوتا سیٹی والا ادھر آ گیا گزرا.
یعنی اتنا سا بولنے سے وہ تھوڑا کہ اپنے بچوں کو بھیج دے گا. میں آپ کو پوچھوں, یہ جو ہمارا مجمع ہے اس میں سے کس کے بچے مدرسے دارالعلوم میں پڑھتے جو حافظ اور عالم ہوتے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. ہاں پورا اٹھاؤ نا. ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ. جب اتنے ماحول میں یہ سو ڈیڑھ سو میں سے تیرہ آدمی اپنے بچوں کو پڑھاتے تو ان کا تو ماحول وہ ہے. آپ ایک مرتبہ کہو گے کہ تم نانم پیڑا جیسے اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ مدرسے میں بھیجو, تو کون بھیجے گا؟ آپ کو تو ان کو پہلے ابتدائی دین کا شوق دلانے کا, اور نماز اذان سے ابتدا ہو کر پھر اللہ آگے کی راہیں کھولتے. بہت سے علاقوں میں ابتدا میں اس طریقے سے محنت ہوئی, ماشاءاللہ مکاتب قائم ہو گئے, مدارس زندہ ہو گئے, اور ہوتے ہوتے اللہ پاک نے بہت کام لے لیا. تو ان کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا, آپ نے کلمہ سکھلایا
جی,
پڑھایا کہ سکھلایا؟
پڑھایا,
پڑھ لو ایک دو مرتبہ. آ گیا نا ان کی زبان پر چڑھ گیا ماشاء اللہ. ایسے کتنے لوگوں کو کلمہ صحیح کروایا؟
ایسے سات آٹھ جن
بس. یہ جو 26 دیہات تھے اس میں سے
وہ آئے تھے ہمارے پاس, جو آئے تھے ہم نے بلایا تھا.
اچھا, اور آپ گھروں میں ملاقات کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ زور سے اب گھبراؤ مت نا یار,
نماز کے لیے کہتے تھے پہلے. آپ نماز کے لیے یعنی کہ یہ کوئی ترتیب بناؤ, یہاں نماز آپ تین چار گھر مل کے پڑھتے ہو جاؤ.
تو کہیں شروع ہوئی؟
شروع تو نہیں ہو, ان کو یوں بتا کیا ہے کہ تم ایسا شروع کرو,
تب اس کا کیا علاج کریں گے؟ صرف بتا کے رہے اور شروع نہیں ہوئی, اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرو گے؟ چلو ہو گیا, آپ چلا بھی لگائے ماشاء اللہ, آپ نے سمجھایا بھی, اب نماز اذان شروع نہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے؟
مقامی ساتھ نانم پیڑا والے کو ہم نے کہا ان کے ساتھ,
تو وہ شروع کرائیں گے. کیا بلی کتے کو مارے سر؟ ارے بھائی اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے. ان کے پاس تو یہ بےچارے دیہات کے قریب میں رہنے کے لیے تو کئی سالوں سے رہتے. چلو, اور ان کی مستورات सुनते भी आपकी बात,
मजदूरात को अंदर कमरे में बिठा के उनको कहने के दोनों उनको कह रहे थे कि आप मजदूरात को बिठाओ,
मजदूरात भी सुनती थी आपकी बात को, कुछ असर लिया हो, किसी को कोई कारगुजारी आई हो कि भाई आप बहुत सालों के बाद आए, या दिन की बात हमारे कानों में परसों के बाद पहली मर्तबा पड़ी, या आप आते रहो, या कहाँ चले गए थे, या क्यों हमारे गांव में आए, हम तो तुम्हारी बात नहीं सुनते, ऐसा कुछ हुआ फिर?
अमुक जगह तो ऐसे भी था फिर ऐसी बात, अभी यानी कि बहुत दिन बाद सुनने मिली और उन्होंने असर भी लिया, जैसे तालीम के बारे में हमने कहा था, उनको बताया कि आप किताब लाओ, किताब लेके आप ऐसा लगे तो यहाँ पे साथी को बोलो, आप किताब हमारे को बोलो।
तालीम के हल्के में आए थे आपके साथ कुछ लोग?
हाँ आए थे।
कितने? 26 देहात की मैं बात करता हूँ,
15 एक जन आए थे
तालीम में बैठे थे,
बैठे थे
माशाल्लाह। कुछ लोगों ने आपके साथ एक दिन, दो दिन, आधा दिन कुछ लगाया?
ऐसे ऐसे 10-12 साथी थे, कोई दो दिन लगा के गए, कोई एक दिन लगा के गए।
पहली मर्तबा लगाया?
हाँ,
यानी आपके साथ
साथी थे वो पहली मर्तबा एक दिन,
माशाल्लाह। अच्छा, ऐसे लोग भी आपको मिले जिनके कानों में अल्लाह उसके रसूल की बात पहली मर्तबा पड़ी हो?
3-1 साथी है।
हाँ, तो जो बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा है, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन तीन को भी मामूली थोड़े समझेंगे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह 2.5 घंटे बयान करने के बाद जब कोई एक आदमी आता था मुलाकात करने के लिए, तो आप 1-1.5 घंटा बात करते थे। तो मुंशी जी और कारी जहीर साहब वगैरह उनको यूँ कहते थे कि हजरत अभी आपको रवानगी की बात करनी है, आप अपनी एलर्जी इनके पीछे इतनी लगा देते हो, एक आदमी के पीछे 1.5 घंटा बात करते हो। बोले आप तो इसको एक समझते हो, लेकिन मेरे नजदीक तो इसकी कयामत तक की नस्लें हैं, एक आदमी नहीं है। एक आदमी को अगर समझा दिया तो इसकी कयामत तक की नस्लें समझ जाएगी। ये जो हम बैठे हैं, हमारे कोई दादा, वालिद, चाचा कोई एक लगे थे, इसकी बरकत से हजारों को अल्लाह पकने लगा दिया। एक इलाके से एक जमात अल्लाह के रास्ते में गई, इसमें एक छोटा सा बच्चा था 18 साल का, वो गया 4 महीने में पड़ोस में, फिर उसने देखा कि माहौल ऐसा है कि माशाल्लाह हाफिज भी हो रहे, आलिम भी हो रहे, तो इसने वहां जाकर पूछा कि भाई मेरे को रहना हो तो? बोले हाँ, जैसे और जगह डॉक्टरी की लाइन की वीजा मिलती है, पढ़ाई की लाइन की, ऐसे वो पड़ोस में 5 साल का कोर्स अगर इस्लामी करना है तो इनको वीजा मिलती थी। उसने कहा मैं 5 साल यहाँ रहूंगा। अब वो गया था 4 महीने में, वहीं रह गया, 4 महीने लगाए, उसके बाद हाफिज बना, फिर उसके बाद आलिम बना, फिर अपनी वीजा का एक्सटेंशन करवाया, फिर उसकी शादी हुई थी, उसकी बीवी को लेकर 2 साल पढ़ाया। एक ही आदमी था, पूरे मुल्क में 35 लाख की आबादी में कोई हाफिज नहीं, कोई आलिम नहीं, ये पहला गया। फिर उसने पूरा साल आलिम भी हो गया, हाफिज भी हो गया, 1 साल भी लगाया, फिर अपने मुल्क में आया। ये 2005 की बात है। फिर 2021 में हम लोग गए तो एक आदमी बन कर आया, पूरा इलाका गैर मानुष था, 35 लाख की आबादी में कोई हाफिज नहीं, कोई आलिम नहीं, एक आदमी 4 महीने लगाकर हाफिज आलिम बन कर आया। आने के बाद फिर हम लोगों ने पूछा कि अभी क्या हाल है? बोले मैंने आकर मेहनत की तो 300 बच्चे हाफिज कुरान बन गए, 12 उलमा तैयार हो गए, 300 बच्चे अभी वहां पढ़ते हैं और 300 बच्चे वेटिंग में हैं। पहले 300 का मजमा इनका इज्तिमा में होता था, फिर 2022 में हम लोग गए, मैंने पूछा कि अभी क्या हाल है? बोले अभी 1000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ने पढ़ाने में लग गए, 12 जगह हिफ्ज क्लास शुरू हो गया और हमारे इज्तिमा में इस साल जो इज्तिमा में हम लोग गए बोले हमारे इज्तिमा में 38,000 का मजमा आया एक आदमी की फिक्र। फिर हम गए दोबारा कि भाई इस साल क्या हुआ, बोले पहले तो जब तुम्हारी जमात आई थी तो कोई हाफिज आलिम नहीं था, इस साल हमारे शहर में 50 मस्जिदों में रमजान में कुरान पाक की तरावीह हुई। हमारे लिए एक एक आदमी बहुत कीमती है, इसलिए हम बहुत तीन आदमी मिले ऐसा ना करें। एक आदमी के लिए भी बहुत लंबा चौड़ा सफर करना पड़े तो आदमी को करना चाहिए। पता नहीं एक आदमी की बरकत से अल्लाह पाक उसकी नस्लों में उसके इलाकों में कितना दीन जिंदा करते हैं। हम इसको जरिया और बहाने के तौर पर एक आदमी मिलेंगे लेकिन वही हिदायत का जरिया बन जावे। चलो और क्या हुआ,
जो हमें बस्ती थी उसमें से 3-4
करीब जैसा मैं बोलता वैसा बोलो ना यार तुम भी।
जो बस्ती थी उसमें से 2-3 जगह हमें नहीं मिली। जैसे बाज गांव है, बाज गांव में हम गए थे, वो गाय का तबेला था तो वो वहाँ 5-6 साथी यानी हमें
मिले ने आपने लिखा दिया।
हाँ जी, आगे दूसरी जमात चली उनको भी मिला।
अच्छा चलो,
दूसरी एक जगह थी भाई संपत वालों का, के भाजपा का बड़ा आदमी था, उसका दामाद हमें पता चला था कि मुस्लिम है तो उसके पास भी हम गए। वो सरपंच था भाजपा, उसके घर गए, उसको पूछा, उसने भी हमें बिठाया, चाय वाय पिलाई उसको। फिर हमने पूछा कि भाई आपका दामाद मुसलमान है, तो उसने हमें बताया कि नहीं हमारा दामाद मुसलमान है, लेकिन गए थे उसके पास। उसको भी
बड़ा आदमी था
जी, सरपंच था।
अच्छा सुनो, हम लोग एक मरतबा निजामुद्दीन में थे और फ्रांस का एक आदमी आया, उसने कहा मौलाना हमारे एक साथी बहुत बीमार है और उसको हॉस्पिटल में दाखिल करना है तो आप कोई रेबर दे दो और हॉस्पिटल का एड्रेस दे दो। मैंने कहा ठीक है, हमारे वहां एक था ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला, हम उसको भेज देंगे। फिर आकर कहने लगा मौलाना जरा अच्छी हॉस्पिटल में उसको दाखिल करना है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। अब वो जो मुंह भर के जैसे साथी कहते ना बहुत बड़ा आदमी है, तो मैंने भी पूछा कि भाई, बोले नहीं मौलाना बहुत बड़ा आदमी है। तो बहुत बड़ा आदमी से हम क्या मुराद लेंगे भाई, 2-5 हजार करोड़ का आसामी होगा, यही लेते हैं ना, बड़ा आदमी किसको कहते हैं। तो फिर आया मौलाना जल्दी करो ना यार, बहुत बड़ा आदमी है। तो कितना बड़ा आदमी है, मेरे जहन में था कि 2-5 हजार करोड़ रुपए का मालिक होगा। उसने यूं कहा कि मौलाना इसके 35 मर्तबा 4 महीने लगे, बहुत बड़ा आदमी। फिर मैंने जल्दी जल्दी तजवीज किया कि ये गाड़ी है, ये हॉस्पिटल है, ये रेपर है। फिर आया बोला ना आपके साथ जो डॉक्टर साहब है जो 2 महीने में लगाते आप इनको भेजो। मैंने कहा भाई ये रेपर है, ये गाड़ी है, ये हॉस्पिटल। बोले नहीं आदमी, बोला ना आप समझे नहीं, ये बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा भाई नहीं, बोले मौलाना ये बहुत बड़ा आदमी है। तो फिर मेरे जहन में क्या आया, उसने पैसों को तो लात मार दी। अरे बोलो 2-5 हजार रुपए को तो उसने क्या किया, फेंक दिया कि भाई वो तुम्हारा जहन साफ कर लो। मेरे को कहने लगा तुमको मैं नहीं कह सकता हूँ, तुम सब तो जुनैद बगदादी हो। तो मेरे जहन में आया कि भैया पैसे का तो बहुत बहुत, तो 200-500 एकड़ जमीन का मालिक होगा, बड़ा आदमी किसको कहते हम लोग। तो मेरे जहन में वो आया। तो फिर मैंने उसको पूछा भाई, बोले यार मौलाना आप समझते नहीं, बहुत बड़ा आदमी, वो बरकर आदमी कहते हैं। तो फिर मैंने पूछा भाई कितना बड़ा आदमी। उसने ये कहा कि हर महीने 15 दिन लगाता है तबलीग में। तो उसने अपनी जमीनों को भी बोलो साइड कर दी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जावन का बहुत बड़ा आदमी, तो फिर आया, बोला ना आप भी चलो नहीं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले बहुत बड़ा आदमी नहीं समझने की बात है, हम बड़ा जिसको कहते हैं ना, इसको वो बड़ा नहीं कहते। हमारे जहन और हमारे ख्यालात का फर्क है, हम माहौल से मुतासिर होकर जैसे सारी दुनिया जिसको बड़ा कहती है, हम भी उसको ही बड़ा कहते हैं। तो फिर मेरे जहन में आया कि यार वो पैसों को भी उसने हटा दिया, 200-500 एकड़ जमीन को भी उसने हटा दी, तो 200-500 दुकानों की किराए की आमदनी होती होगी, इसको ये बड़ा आदमी कहता होगा। तो फिर मैंने कहा भाई मैं यहाँ 100-150 आदमी का काफिला है, और मैं नहीं बोला ना तुमको चलना पड़ेगा, बहुत बड़ा आदमी। मैंने पूछा मैं बता तो सही कितना बड़ा आदमी। वो कहने लगा कभी इसकी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई। बड़ा आदमी कौन है? अरे बोलो, माल के एतबार से भले गरीब है, हजरत बिलाल काले थे, गुलाम थे, गरीब थे, लेकिन दीन के एतबार से बड़े हुए थे। तो हजरत उमर इनको क्या कहते थे? सैयदना बिलाल, समझे? तो हम बड़ा किसको कहेंगे? अरे बोलो ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। तो हमारे नजदीक तो ईमान वाला सबसे बड़ा है। हर ईमान वालों की फिक्र करना और उसकी आखिरत बन जावे उसके लिए जद्दोजहद करना, ये हमारा काम है। चलो तो फिर क्या हुआ? वो जो बड़ा आदमी आया था उसका क्या हुआ? बात सुनी तुम्हारी, चलो अच्छा किया। लेकिन बड़ा आदमी कौन है? तुम लोग सब बड़े हो, जिसको अल्लाह ने ईमान दिया वो सबसे बड़े। और कुछ पैदल भी चले आप लोग? कितना?
80 किलोमीटर से
ज्यादा से ज्यादा कितना चलते? 23 किलोमीटर। माशाल्लाह भाई, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के दीन की निस्बत पर कौन चलता है? दुनिया के लिए तो हर आदमी सामने घर के सामने मस्जिद होती तो भी स्कूटर पर जाता है, लेकिन अल्लाह के दीन की निस्बत पर आप चले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से ताइफ कैसे गए थे? पैदल। तो ये निस्बत नबियों वाली मिली। हमारे ऐसा भी कहते थे, एक इलाके में थोड़ा सा चल के आए, फसादात का वक्त था, फिर कहने लगे अल्लाह ने जहाँ से हम चले और जहाँ पहुंचे इस जगह को तो अल्लाह ने महफूज कर लिया। पैदल चलने से फितने खत्म हो जाते और अल्लाह का कहर महर से बदल जाता है। तो माशाल्लाह इन्होंने एक दिन में 23 किलोमीटर
जी
कब से चले थे? सुबह से,
सुबह फजर के बाद सुबह वक्त में पढ़ के चले थे
माशाल्लाह।
तो 10:30-11 बजे पहुंचे।
बहुत अच्छा माशाल्लाह। लोग जिम में जाते हैं, हमारे वहाँ सूरत के अंदर वो जो ब्रिज है ना, वहाँ सुबह सुबह में 500 स्कूटर पड़े होते नहीं कह के, बोले दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्यों माल लगाते हैं? ताकि तंदुरुस्ती मिले। और हमारा पैदल चलना फिरना तंदुरुस्ती भी मिलेगी और इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा और नबियों वाली निस्बत भी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे माशाल्लाह। और यहाँ कितने साथियों को लेकर आए?
यहाँ तो अभी ये दूसरी जमात चले गए, तीसरे साथी आए।
यानी ये पहले राउंड में चले?
जी।
अच्छा, एक ही जोन में है, पहले राउंड की है और उसके बाद दूसरे राउंड की, तो वो लोग लेकर आए
थे।
तुमने इनको हैंड ओवर कर दिया कि तुम सब लेकर आना। हाँ, दूसरी इसलिए कि पहले ये जब इनका चिल्ला पूरा हुआ होगा तो इज्तिमा को 40 दिन बाकी होंगे ना। और आपको क्या फायदा हुआ? आपकी जमात को क्या फायदा हुआ?
बहुत सारे को, यानी कि पहली बार चले थे जिनमें उनको, यानी कि बहुत फायदा हुआ।
क्या बहुत फायदा है? क्या हुआ?
जोन में जाना चाहिए,
जोन में जाना चाहिए। और क्या हुआ? कुछ एहसास हुआ कि भैया बेचारा कल में नमाज भी नहीं पढ़ते, अल्लाह ने हमको कितनी नेमतें दी है
जी।
अरे बोलो
जी जी,
ये तो अल्लाह की तरफ से तौफीक है ना, वरना वो भी हमारे जैसे मुसलमान है, वो भी हम जितने रुपए के गेहूं लाते इतने रुपए के किलो गेहूं खाते, फिर भी वो बेचारे मस्जिदों से इज्तिमा से दूर है और अल्लाह ने कितना करम फरमाया। तो अपनी नेमतों की शुक्रगुजारी हो اور ان کو اللہ پاک یہ نعمت دے ہوئے اس کی فکر ہونی چاہیے. اور کیا تم لوگوں کو فکر ہوئی؟ کبھی رونا آیا ان کو دیکھ کر؟ ان کے لیے دعائیں کر لیں. باقی عمل تمہارے ہوتے تھے سب؟
جی
تعلیم ہوتی تھی.
تعلیم بھی ہوتی تھی.
اور کیا کیا ہوتا تھا؟
تعلیم ہوتی تھی, سب قرآن کے حلقے لگتے تھے اور
روزانہ. چلو ماشاء اللہ بھائی, دوسری جماعت آ جاؤ.
ہماری جماعت میں جیسے پہلے آواز ہے اور آواز کے اندر
کتنے ساتھی تھے؟ چار مہینے والے کتنے تھے؟
ساتھی تھے اس میں, چار مہینے والے پانچ ساتھی اور دو نئے ساتھی پہلی موت والے اور ایک ساتھی کا چلا لگا.
تو نئے ساتھی کو تو کیا لینے کا کہا ہے, وہ بےچارا کیا کرے گا؟ اس کو تو آپ کو دوسری جماعتوں میں بھیجنا چاہیے. یہ تو زونوں کی جماعت میں تین چار ساتھی چار مہینے والے ہو اور باقی تمام ساتھی کم سے کم چلا لگائے ہوئے.
چلو اور اس کے اندر ہم لوگ ہوا پہنچے تو ہوا
کی جماعت تھی
مکلم پران. مکلم پران.
اچھا, اور یہ کون سے زون میں کام کیا؟
ہوا کے اندر ہم نے پہنچنے کے بعد ہم نے تقریب بنائی.
آپ بھی بتلاؤ نا کتنی, جیسے ان کو سات بستی مانوس اور چوبیس بستی غیر مانوس دیے تھے, آپ کو کتنے دیے تھے؟
ہمارے کو بھی یہی سات آباد اور چھبیس بنجر بستی.
اور آپ نے قیام کہاں کیا؟
چھبیس بنجر بستی تو پانچ مکان سے کم ہوا تھی. اب اس کے اندر مسئلہ یہ کہ یہ جو اطراف تھے اس کا 150 کلومیٹر کا اطراف ہے, یعنی اب یہ پورا اوپر جنگل کا علاقہ ہے. دو مکان, تین مکان, چار مکان تو اس کی سطح بھی ایسی تھی جو مسجد میں رہ کے وہاں سے پوری بستی کور کرنا پڑتی. ایک ایک ملاقات 35 کلومیٹر, دوسری ملاقات 60 کلومیٹر, کوئی ملاقات 70 کلومیٹر. وہ دور دور ہے اور سب ایک مکان, دو مکان, تین مکان, تین مکان, اکثر تین مکان ہے, چار مکان ہے بس, دو مکان اور ایک مکان والے زیادہ.
تو یہ 24 یا 26 بستی کے تمام مسلمانوں کی اور ان کے گھروں کی ملاقات ہوگی
100%.
ماشاءاللہ,
پوری جتنے بھی گئے سب جگہ پر ان کے باتیں تھے, ان کے عورتیں اگر کام میں گئے تو ان کو سمجھا بجھا کر ہم لوگ نے تھوڑی دیر ان کو بٹھا اور ان کی عورتوں کو اندر بٹھاتے تھے اور ان کے مہروں کو جیسے ان کے جیسے جھپڑا ہوتے تھے تو مستوات کے اندر بٹھانے تھے اور ہم ان کو باہر لے کے بیٹھ کے بات کرتے تھے اور ان کے سامنے جو بات کرتے تھے اکثر اگر ان کے گھر میں تین مرد بھی ہوتے تھے تو تین مرد کو بھی ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ کم سے کم نماز جتنی دیر نماز پڑھی جائے اتنی چیزیں تم یاد کر لو, سیکھ لو. ہم نے کوشش بھی اب کی اکثر جہاں جہاں پر یہ قابو میں آیا کہ بھائی جیسے جاملہ پاڑا گئے تھے تو جاملہ پاڑا میں باہر مل کے سات بالک مرد ایک ہی جگہ پر, اب وہ ایسے ہیں کہ غیر مانوں سے پہلے تو انہوں نے ان کو سوال کیا کہ بھائی آپ سننی ہے. میں نے کہا بھائی سننی کس کو کہتے تو میرے کو پتا نہیں ہے, پر میں نے کہا میرے پاس چہرہ بتایا, میں نے کہا میرے کرتا ہے پائجامہ ہے. سر نے کہ سنیے آپ کے سوکھے تو مجھے پتا نہیں ہے مگر یہ ہے. پھر میں نے ان سے بات کرنا شروع کی. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا مگر وہ ہم نے کیا نماز تو آپ لوگ پڑھ لو, ہم نے ان کو چھوڑا نہیں, کوئی بات نہیں, لے کے نماز پڑھ لیتے. پھر نماز کے بعد میں نے ان کو ہمارے پاس جمجم اور کھجور تھی اور ناشتہ وغیرہ جو تھا لے کر گئے تھے, ہم نے ان کو ہدیہ دیا. پھر ان کو بٹھا کے سمجھایا, بیٹھے بچے کو ایک کو بلایا پھر دوسرے کو بلایا, ساتوں سات بچے کو بٹھایا, انہوں نے مستورات کو بھی اندر بٹھایا. تقریباً ہم نے ان سے مذاکرہ کرتے کرتے ان کے بچوں کے بارے میں کہ یہ بچے اتنے ٹائم سے آپ کے ساتھ یہاں رہتے تو ان کی قرآن کی تعلیم کا کیا ہے, یہ ان کے اب وہ بچوں کو جب ہم نے لے کر ہلکا لگایا وہاں ایک بھی بچہ یعنی کلمہ نہیں پڑھ پائے. سات بچے تھے تو ساتوں سات کو پھر ہم نے بلکہ تھا وہیں بیٹھ کر پھر ان کو کلمہ سکھایا. ہاں الحمد للہ. اور ایک لڑکا جو تھا نا جو تھوڑا باڑمیل میں گاؤں میں رہ کر آیا تھا, تقریباً 15 سال کا لڑکا تھا, وہ تو 15 سال کا لڑکا میں کہ یہ ذرا ذہین لگتا ہے تو اس بچے کو لے کر میں بیٹھا اس کو سورہ فاتحہ یاد کرانے کے لیے. بیٹا اگر تو سورہ فاتحہ یاد کر لیتا ہے یا دو چھوٹی سورت یاد کر لیتا ہے उसने इंटरेस्ट भी लिया, फिर उसने तस्कील भी की, मगर गैर मानुस है तो उसके वालिद ने भेजा ही नहीं। फिर मैंने क्या कहते हैं, तेरा मोबाइल दे, तो मोबाइल के अंदर उसको सूरे फातिहा,
गैर मानुस से वो कैसे पता चला?
नहीं, उन्होंने पहले ही मतलब हमको जो है, आप कहाँ से आए, वगे की मस्जिद और जामा मस्जिद से आए हैं या फिर और कोई जगह से आए हैं? वो जो वगैरह में जो
यानी गैर मानुस की हो क्या आपके पहचान की ये गैर मानुस है? किसको आप गैर मानुस कहते हो, किसको मानुस कहते हो?
और वो हमारे को तो मतलब उन्होंने वो पहले बात करने से मना कर दिया, पहले तो मना कर दिया, इस वजह से हमने वो ये समझा कि ये गैर मानुस है।
अच्छा, फिर बात सुनी तो फिर आपने समझ लिया कि ये मानुस हो? नहीं, यानी ये भी हमारे जहन का धोखा है। हमने गैर मानुस करके हजारों लोगों को छोड़ दिया। वो तो बेचारे समझते नहीं, लेकिन हम भी गैर मानुस करके इनको छोड़े रखते हैं। अब जब हम छोड़ देंगे और उनके कानों में अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं पड़ेगी, तो कैसे उनकी जिंदगियों में दीन आएगा? और हमने सुनी सुनाई बातें चल रही। हम एक इलाके में गए, भाई ये 500 मकान है और अनटच है, बोले सब गैर मानुस है। मैंने पूछा भाई गैर मानुस, बोले वो बात नहीं सुनते। अच्छा, ये जो मजमा जहां मैंने बात की, भाई ये जो 150-200 का मजमा है, तुम में से कौन वहां गया था और किसको उन्होंने यूं कहा कि भाई मत आओ, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे? बोले हमको तो कुछ नहीं कहा। ये 150 आदमी कहने लगे हमको तो कुछ नहीं कहा। हमारे मस्जिद में एक जमात गई थी आज से 15 साल पहले, उसमें एक बड़े मियाँ थे जिनका इंतकाल हो गया, उनको इन्होंने मना किया था, तो वो बातें 15 साल से चल रही। अरे बाजे मर्तबा एक आदमी यहाँ से बम्बई तक जाता है ना, और कोई मुसलमान दीनदार तबलीग वाला मिल जाता है और उसका आधा पौना घंटा एक घंटा जहन बनाने की बात करता है ना, तो पूरा वो पलट जाते है। बाजे मर्तबा कोई कारोबार लेन देन करता है ना, तो वो कारोबार से मुतासिर हो जाता है। बाजे हम लोग खाली हज में गए और पैदल हज किया, एक हमारे गांधीनगर का बहुत पक्का, जिसको हम कहते हैं ना, क्या कहते हो तुम, तो वो हमारे कमरे में था। पहले दिन तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी हमारे पीछे। खैर, फिर मीना का तीसरा दिन था मीना में जाने का, तो मैंने कहा हाजी साहब आप पैदल चलोगे? हम लोग पैदल जाएंगे। तो उसने कहा हाँ, पैदल आप ले जाओगे तब जाएंगे। मैंने कहा हम तो आपको ले जाएंगे। अब ले गए, रास्ते में इनका इकराम किया, नमाज पढ़ाई, फ्रूट खिलाया, पानी पिलाया। गर्मी का जमाना था, बहुत पहले की बात। फिर पूरा सफर करने के बाद कभी ऐसा होवे कि भाई मस्जिद दूर होवे या कोई ऐसा मौका होवे कि सफर में होवे, तो सबसे पहले मुसल्ला बिछावे अपना और मेरा और हमारे दूसरे 2-3 साथी का, बोला ना चलो अपने नमाज पढ़ लेते। वो पहले दिन नमाज नहीं पढ़ते थे, पहले दिन हमसे हमारे साथ खाना नहीं खाया, पहले दिन हमारे साथ बात नहीं करी, लेकिन उसके बाद पूरे सफर में रोजाना चाय पिलावे, रोजाना बिस्किट खिलावे, रोजाना खाना पका के खिलावे। फिर वापसी में यह कहने लगे मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की शादियों में आप ही को आना है। अब 1-1.25 महीने की या 40 दिन की जो मुलाकात और निजाम, तो आदमी का जहन पलट जाता है। अब हम बस 10-15 साल पहले की बात को गैर मानुस कहते रहेंगे तो ऐसी ऐसी कितनी नस्लें हमारे हाथ से निकल जाती है। 40 साल में एक नस्ल अपने हाथ से निकल जाती है। और मैं आपको कहूं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जो अपने घर से निकले थे, किसको कत्ल करने की नीयत से निकले थे? अरे बोलो, अगर ये अल्लाह ना करे इनके हाथों से अमल हो जाता तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह होता। अब जब चले तो एक साथी का, अरे वहां कहां जाते हो, पहले अपने बहन बहनों की तो खबर लो। और सीधे घर गए, वो खाली सब छुप गए और बहन को मारा, वो पूरे वाकया हुए। फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वो सहीफा इनके हाथ में आया जिसमें लिखा हुआ था कुरान की आयत, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुद। बोले ये सहीफा, बोले नहीं तू तो नापाक है, जा पहले गुसल कर। फिर गुसल किया, फिर कुरान की आयत पढ़ी, پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو وہ قاری صاحب نکلے. تمہیں خوشخبری ہو, کل پنجشنبہ کی رات کو اللہ کے نبی نے دعا مانگی, اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام ابو جہل ان دونوں میں سے جو تیرے کو پسند ہو ایمان کی توفیق عطا فرما, شاید تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی. یہ پھر گئے اور اسلام کو قبول کیا. تو جب سے نکلے گھر سے اور اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچنے تک کتنے سال ہو گئے, کتنے سال ہوئے, کتنے مہینے ہوئے, کتنے ہفتے ہوئے, ارے بولو, دو چار گھنٹے. اب نکلے تھے تو کیا نیت سے نکلے, اور دو چار گھنٹے میں اللہ پاک نے دل کو کیسا پلٹ دیا کہ ایسا عمل کر کے گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو نبی بنا. ہم نامانوس نامانوس اور مخالف مخالف بول بول کر ہم ان کو تو جب وہ ہوں گے تب ہوں گے, ہم خود مخالف ہو گئے. ہم نے خود نے ان کو ملنا جلنا اس کو چھوڑ ہی دیا کہ بھائی نہیں یہ تو ہمارے مل ہی نہیں سکتے. اس لیے دوستو بزرگوں میں اور آپ اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں. ہم یوں کہتے کہتے برسوں برس تک ان کے اور ان کے بچوں تک ہم نے کوئی فکر نہیں کی تو بیچارے بغیر کلمہ نماز کے دنیا سے کتنے رخصت ہو. اس لیے ہمارے پورے علاقے میں نامانوس کوئی بھی نہیں, غیر مانوس کوئی بھی نہیں, کوئی بھی ایسا مخالف نہیں. ہم اپنے ذہن کو صاف کر دیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ سامنے والوں کا بھی ذہن صاف کر دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو اور
ان کو پھر واپس لے کے بیٹھے اور اس سے مستقل بات ہوئی تو عشاء کی نماز تقریب 9 بجے پھر ہم لوگ نے پڑھی تو اس وقت انہوں نے جتنے سب بچوں کو آپ نماز پڑھے ان کے ساتھ خود نے بھی نماز پڑھی
ماشاء اللہ.
اور ہم لوگ 3 بچوں کو کچھ غسل کرنا, آپ بھی غسل کرو ان کے, غسل کرو آپ بھی نماز پڑھو ان کے ساتھ. تو پھر انہوں نے نماز بھی پڑھی. اس میں ایک لڑکوں کو پھر میں نے جو سورہ فاتحہ وہ ریکارڈنگ کر کے سورہ فاتحہ اور ناتینا اور قل اللہ اس کو اسی وقت میں بچوں کو فون نمبر بھی لیا, ان کے سب کے فون نمبر لیا اور ان سے باقاعدہ فون پہ بات بھی ہو. ہاں الحمدللہ وہ بلکہ ان کے پھر بعد میں وہ اس بار آمادے بھی ہوئے کہ اس کو جب جتنی پڑھائی کرتا ہے تم اس کو لے جانا ہے. چھوٹے بچے جو 14 سال کا تھا نا اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان شاء اللہ جائیں گے ہم ان کے پاس واپس.
ماشاء
اللہ. اس کے بعد جو ہم لوگ جو ہے یہاں سے تینچلی کرماڑ کر کے عباس بھائی ہیں اور ایک صوبی درمار کر کے اس میں ابراہیم بھائی ہیں. ابراہیم بھائی جو ان کی 4 لڑکیاں ہیں اس میں 2 لڑکیاں انہوں نے پہلے ڈانگی کے ساتھ تھی اس کا انتقال ہو گیا لڑکی کا, دوسری بھی ڈانگی کے ساتھ. 2 لڑکیاں انہوں نے مسلمان میں دی تھی, ایک سلیم بھائی ڈرائیور کر کے, دوسری جو ہے وزیر بھائی نواپور کے. ابھی وزیر بھائی کی جو بچے پیدا ہوئے ان کے اندر 3 لڑکیاں ہیں. اب 3 لڑکیاں اب ان کو ہم نے, ایک لڑکا ہے 3 لڑکی ہے, ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ جو ہے نا جیسا اگلے معاملے میں ایسا ہوا ہے تو آپ اپنے کم سے کم ان بچیوں کے بارے میں, اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو اطراف کے جو ساتھی ہے جیسا نانند پیڑا ہوا اور اس کے علاوہ دوسرے ساتھی ماشاء اللہ انہوں نے ان کو رشتے بھی لا کے بتائے کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنے مسلمان رشتوں میں بچیوں کو مسلمانوں کے گھروں پہ دینا. تو وزیر بھائی کی جو لڑکیاں ہیں وہ 3 لڑکی ایک جو ہے وہ ہونگارڈ میں, ایک لڑکی بینک میں بڑا بینک میں ہوا میں کام کرتی ہے, اور ایک لڑکی. تو میں نے ان کی تعلیم کا کیا, میں نے کہا دیکھو ان کے لیے آسان آستہ کر سمجھو کہ آپ اگر ان کو ایک مہینے 2 مہینے کے لیے بھی اگر آپ کچھ کوشش کرتے ہو تب ان کا راستہ. قریب میں مدرسے ہیں, قریب میں بڑے مدرسے ہیں, یہ بچیاں اگر 1 مہینے کی چھٹی لے لیتی ہے تو ان کو بنیادی تعلیم کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے ان کو. تو ان کو سمجھا تو انہوں نے
طلب پیدا کرا. دو ایک ایک لڑکی کا ایڈریس اور کیا کرتی ہے نہیں, وہ طلب پیدا ہوگی نا خود بخود ہی اپنے بچوں کو.
ان کو وزیر بھائی کو لے کر آئے باقاعدہ, ان کو یہ چیز کے لیے ان کو وصول کر کے لے کر آئے وزیر بھائی کو, اور وزیر بھائی کی ہم نے تشکیل بھی کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلو ساتھ میں, آپ ہمارے ساتھ 3 دن لگاؤ 10 دن لگاؤ, مگر وہ 1 دن رکے وزیر بھائی, اس کے بعد وہ چلے گئے.
بچوں کی پڑھائی کا کوئی نظام نہیں ہے,
بچوں کی پڑھائی کا کوئی نظام نہیں.
تو ہمارے پورے علاقے میں ایسے علماء ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں مکاتب کا نظام شروع رکھتے ہیں, ان کو جا کے ذرا تھوڑی کر لو, یا ہمارے ساتھ ہی تھوڑی فکر کر لے ताकि कम से कम इनके वहाँ कोई बाजे इलाकों में ऐसे इलाकों में असर से मगरिब मगरिब से ईशा एक घंटे एक नमाज एक घंटे की तालीम उलमा इकराम जाते हैं और उनके बच्चों अब जो नस्ल ऊपर की हो तो हो गई लेकिन कम से कम आने वाली नस्ल की जिंदगी की अकायद नमाज रोजा कुरान ये तो बाकी रहे।
नहीं इसमें फिक्र हुई हाँ फिक्र हुई और बल्कि इसमें बहुत सारी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अगली आगे भी जमाते चले रहे तो उसके अहवाल थे तो उसके हिसाब से वो मतलब बहुत सारी जगह पर एक ट्यूशन क्लास जाकर पढ़ा तो
हो रहा है चल रहे
हाँ हो रहा है
इतने इलाकों में
वो ऐसे तकरीबन 10 बस्तियां हैं ऐसी जहाँ पर यानी हाफिज साहब जाते हैं यानी नानन पड़ा से है या हवा के अंदर 3 मस्जिद के जो इमाम है
तो ये 24 बस्ती में 10 बस्ती में तो चलो ये हुआ बाकी की 14 बस्तियों की फिक्र दिला दें
तो। हाँ इंशाल्लाह
चलो और क्या वहाँ के अहवाल थे
इसके अलावा हवा प्रॉपर में भी जो है
नमाज कोई जगह नमाज अजान जिंदा हुई
हर जगह पर हमने जितने भी 3 तालिब मरते या 5 तालिब मरते उनको एक बात समझाई कि आप अपनी जगह पर आपको तो कोई मस्जिद की पूरी दिया मस्जिद है हमारे लिए अभी चौगान है आपका सबके पास आपका तो घर में बड़ी बड़ी जगह है अब बाहर प्लास्टिक बिछा के नमाज पढ़ लो तो वो उसको उनको
बातों से शुरू नहीं करवाया आपने
हमने कोशिश बहुत की बल्कि उनको लाने के लिए मौलाना हम लोग थे ना जैसा भी 35 किलोमीटर था वो लड़का 35 किलोमीटर 3 मरतबा उसके बाद हम उसूल करने जाए तो पीछे कमरे में पीछे
देखो हमारे नबी कूबा में गए तो सबसे पहले क्या बनाया अरे बोलो हमारे नबी मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो 2 यतीम के बच्चों की आपने जमीन खरीद करके पहले क्या बनाया ये हमारी बुनियाद है यानी ये कोई जोन की जमात का नहीं है ये तो हमारे नबी की सबसे बड़ी सुन्नत है अगर मस्जिद है तो अजान होगी नमाज होगी मकतब होगा पहले तो मदीना मुनव्वरा में और ये तमाम मस्जिद में पूरा आने वाली जमातों को ठहराना खेतियों को ठहराना फैसले वहां होते थे आने वाले वक्त रुकते थे यानी पूरा के पूरा काम मस्जिद से होगा लेकिन अगर मस्जिद ही नहीं है तो आप कोई काम कर सकोगे हमारे लिए मस्जिद का माना हो नहीं कि लंबी चौड़ी तामीर हो गए ना ऊंची जमीन खरीदने भाई कोई भी ऐसी जगह है आप उसमें 2-4 खंभे ले आओ 2-4 प्लास्टिक लगा दो इनकी मस्जिद होगी हमारे नबी की मस्जिद सन हिजरी 9 तक कोई लाइट नहीं जली और कई सालों तक तो उसके बाद भी कच्ची रही कंकरियां बिछी हुई थी वो जो आता है ना शबे कदर के मामले में रात को बारिश हुआ वो सब कच्ची जमीन थी कोई पक्की ये इसलिए ये तमाम चीजें हुई कि ताकि हम भी आसानी के साथ और नमाज अजान जिंदा कराने के लिए कोई मसला ही नहीं है बल्कि हमारे तो मौलाना ये कहते तबलीग में भी कोई पैसे की जरूरत नहीं ये जो हम जाते हैं अगर आप पैदल गए एक पैसा लगेगा आपको हाँ खाना पीना हो तो घर पे रहकर भी आप खाते हो आपको खाना पीना पड़ेगा तबलीग के नाम पर दावत के नाम पर हमारा कोई पैसा नहीं लगता ऐसे मस्जिद मदरसे कोई भी एक पढ़ाने वाला हाफिज साहब उसी में से हो भाई जरा इनको थोड़ा याद ध्यान ही करा दो बहुत आसान की शक्ल में इनको बतला कर इनको नमाज अजान इनके मकातिब का निजाम इनके मस्तूरात ये पूरा निजाम हमको करने की जरूरत है चलो और क्या हुआ
इसके आगे हम लोग इसके अंदर सुबीर के अंदर गए तो देहर करके करीब में एक गांव था देहर देहर के अंदर मोहसिन करके एक लड़का था वो उसका डांगी के साथ शादी की थे वही रहता था हालांकि बहुत
डांग के रहने
डांग के लोकल तो उसके जो ताल्लुकात थे वो दीनी घराने से थे हमने उनके घर वालों से कांटेक्ट किया उसी वक्त में फोन लगाया उनसे बातचीत की और उनको इसके बारे में फिक्र दिलाई कि भाई आप इसके बारे में कुछ सोचो कि भी इसका कोई रास्ता निकले तो समझाया उसको और उसको भी बाकायदा हमने कवर करने की कोशिश की हुआ असल 108 पे एम्बुलेंस में आरोग्य खाते में था वो GPS के हिसाब से
फोन नंबर वगैरह लिया है
सबके नंबर लिए तो
ये ताल्लुकात बाकी रखना
जी
आपकी दूसरी जमात थी ना
जी
अच्छा यहाँ कुछ लोग आए हैं
यही हम लोग तो यानी ये जितनी तस्कीलें की है उसके अंदर 31 साथी वसूल करके लेकर आ गए हैं और दूसरे
उसमें पहली बार इज्तिमा में आए हुए इससे कितने हैं
पहली बार इज्तिमा में आने वाले में अभी वो जो लोगों से मुलाकात अभी
नहीं नहीं 31 में से ऐसे कोई नहीं है ये सब पुराने हैं
ये पुराने हैं
तो बाकी
आवाज जो है ना आवाज जो आवाज चल रहा है ऐसा है कि पहली मतलब जमात निकले जो उसको शास्त्र भी वही है,
श्री राधे आएंगे सबको लेकर आएंगे
इंशाल्लाह।
अच्छा आपके साथ कुछ लोगों ने वक्त लगाया
हमारे साथ ऐसे, यानी वक्त लगाने के अंदर तो कोई आधा दिन कोई दिन कोई अमल में
तो बहुत बड़ी बात है
जी, इस तरह
आधा दिन भी बहुत बड़ी बात
है। ऐसे है बहुत सारे साथी,
कितने
ऐसे 9 साथी तकरीबन आए हैं, 8-9 साथी
माशाल्लाह। आपके साथी रहे वो आएंगे तो आपके साथी रख रहे हैं इनको
जी,
साथ अभी आएंगे
जी जी जी,
और इनको पूरी तरतीब बतलाना
जी।
हमारा तो उमूमी ये इज्तिमा है ना, ये भी हिदायत का जरिया है। मौलाना इब्राहिम साहब ने एक जगह कहा था कि आने जाने वाले जो काफले हज के होते थे पैदल, वो घर घर की मुलाकात, और ये हमारे उमूमी इज्तिमा ये हिदायत का जरिया है। अब वो आकर हमारे इस माहौल में रहेंगे, नमाज को देखेंगे, खाने को देखेंगे, और ये पूरा एक इंतजाम देखेंगे कि कैसे अच्छे लोग कुर्ता पायजामा नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, तालीम करते, इससे वो मुतासिर होंगे। इसलिए इनको पूरा अपने साथ बिठा कर इस्लाम के साथ चलो ठीक है, बदुई जमात चलिए ना। अच्छा आपके यहाँ टोटली देहात कितने हैं, गैर मानुस जिसको आप कहते हो, नहीं यानी कितने हैं पूरे नवसारी में निकाला?
तीस मस्जिदें हैं।
नहीं जहाँ मस्जिद मदरसे भी नहीं हो और 5 से ज्यादा मकानात हो, ऐसे कितने हैं जो पहले गैर मानुस थे अब मानुस हो गए? पहले वहाँ अजान नमाज नहीं होती थी अब हो गई, पहले वहाँ कोई आमाले दावत नहीं थे हो गए, तो पहले कितने थे और उसमें से कितने काबू में आए है भाई, मालूम है किसी को शाहिद?
पूरे काबू में आए तो ऐसा तो नहीं है, बस जगह के ऊपर वो लोग नरम बने और वहाँ जा सके।
कितने थे, कितने थे पहले?
पहले तो तकरीबन 30-30 मस्जिद थी पूरे जिले में, कि जहाँ हमारी जमात नहीं जा सकती।
अच्छा, और अभी उसमें से कितनी जा सकती है? अभी 30 जगह से अभी कितनी कितना आपकी जमात जा सकती है?
दो मस्जिद खुली कि वहाँ जमात जा सकती है,
अभी 28 मस्जिदों में नहीं जा सकती,
नहीं जा सकती।
और ऐसे देहात की जहाँ मस्जिद भी ना हो, मदरसा भी ना हो और 5 मकान से ज्यादा मुसलमानों के घर हो, ऐसे कितने होंगे?
अब वो सब बुक में मुझे तो याद नहीं है, सब है।
तो आपने किसी को अभी तक सौंपा नहीं, इतने साल हो गए?
नहीं नहीं, सबको सौंपा।
किसको सौंपा है, कोई को खबर तो है
नहीं?
शायद तुमको खबर है,
मिनाज भाई, जुनेद भाई, नौसारी मिनाज भाई, जुनेद भाई, और वो लोग बैठते नहीं है ना, घर में बैठना चाहिए ना, यहाँ तस्की तो कमरा में भी बैठते नहीं है, हर दो 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 बैठी है तो भाई दो बैठने का नहीं।
देखो ऐसे हर बस्ती में, अभी हम 5 जगह है तो एक इलाके वालों ने कहा कि हमारे यहाँ 104 बस्तियाँ ऐसी थी जो गैर मानुस के नाम के थी, लेकिन ये 10 साल की मेहनत पर 50 बस्ती ऐसी हो गई कि जहाँ अजान नमाज होती है, मस्जिद मदरसे कायम हो गए, इबादत खाने कायम हो गए। अब हमारी 50% 54 मस्जिद 54 बस्तियां बाकी रह गई। अब ये जो हमारी 54 बस्तियां बाकी रह गई, अब उसको आप इतनी आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो पता नहीं कब होगी। अल्लाह पाक ने एक एक उम्मती में इतनी इस्तेदाद रखी है, अगर वो ठान लेवे कि पूरे इलाके में दीन को पहुंचाना है तो अल्लाह पाक उसकी मदद कर इस आदमी को जरिया बनाकर पूरी की पूरी बस्ती में दीन को जिंदा करेंगे। मुसब इब्ने उमेर कितने थे? अरे बोलो। 1 साल के लिए गए, कहाँ? मदीना। 1 साल हाजियों के साथ गए और दूसरे साल वापस आए। 1 साल की मेहनत, कोई मस्जिद नहीं, कोई मदरसा नहीं, किसी ने इनको कयाम करने की इजाजत नहीं दी, किसी ने इनको ठिकाना नहीं दिया, लेकिन मेहनत करते रहे खेत में, बाग में, इधर उधर, और कुरान पढ़ते रहे, और वो सामने वाले भी सब अशार के लोग थे, शायर लोग थे। आहिस्ता आहिस्ता उनको मानुस किया और मेहनत करते करते 1 साल के नतीजे पर मदीना मुनव्वरा के अक्सर घरों में अल्लाह पाक ने इस्लाम को दाखिल कर दिया। एक आदमी की मेहनत की बरकत से, पूरे साल भर मेहनत की। और कितना अल्लाह के नबी का तारुफ करवाया, वो अंसार की बच्चियां जब आती थी लेने के लिए और शाम तक इंतजार करके वापस चली गई, फिर दूसरे दिन आई, फिर तीसरे दिन आई, जब अल्लाह के नबी को दूर से देख लिया काफले को, तो इनकी जुबानों से निकला तला अल बद्र अलैना। अल्लाह के नबी कितनी पहचान कर रहे, एक आदमी ने, एक आदमी ने हर घर में मेहनत करके अल्लाह उसके रसूल की बातों को बतलाकर ईमान और इस्लाम और आखिरत की फिक्र दिलाकर मदीने मुनव्वरा के अक्सर घरों में इस्लाम को दाखिल करा दिया। अल्लाह ने इतनी इश्तेदारी इस उम्मत में रखी है। मौलाना इलिया सब कितने थे, अरे बोलो, प्रोफेसर सनाउल्ला फ्रांस में गए तो कितने थे, एक। यानी एक एक आदमी, अगर हमारा ये मजमा, मैं यूं कहता हूं कि 50 बस्तियां हैं, 100 बस्तियां हैं, हमारा ये मजमा अगर पूरा ठान लेवे कि नहीं मैं खुशी गमी में उनको बुलाऊंगा, उनकी खुशी गमी में मैं जाऊंगा, अगर वो देहात में आए, अगर वो हमारे नवसारी शहर में आए तो कोई हॉस्पिटल का काम है तो मैं इनके साथ दे दूंगा, अगर ये किसी खरीदी करने के लिए आए तो एक वक्त मैं इनको खाना खिला दूंगा, इनके साथ ऐसा ताल्लुक पैदा करे कि जिसकी बरकत से उस गांव में, उस इलाके में हमारी एंट्री हो, फिर आपका आना जाना हो, फिर आप इनको मानूस करें। तबलीग की बात तो बाद में करना, पहले आप इनको मानूस करो, और होते होते फिर आहिस्ते आहिस्ते इसको हमारे इज्तिमा में लाओ, हमारी मस्जिद वाली जमात में लाओ, इनको 3 दिन में लाओ, और होते होते उस बस्ती को माशाल्लाह मेहनत का मैदान बनाओ। अगर हमारा ये मजमा अगर एक एक इलाका और एक एक बस्ती ले लेवे और ये तय कर लेवे कि इंशाल्लाह हम साल भर मेहनत करेंगे, तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। हमारी मेहनत की बरकत से अल्लाह पाक उस बस्ती और उस इलाके को अल्लाह पाक खड़ा कर देंगे। तो ये सब नियत करते हैं इंशाल्लाह। अरे भाई करोगे, कौन कौन करेंगे? एक गांव लेकर पूरे साल में कुछ भी शक्ल हो, यू कहते हैं ना भाई, जिस पानी से भी मग चढ़ते हो तो चढ़ा देना चाहिए। अब जो भी शक्ल में उस बस्ती में दीन जिंदा हो जावे, अजान नमाज जिंदा हो जावे, मुसलमानों का कलमा सही हो जावे, इनकी बच्ची के ताले बच्चों के तालीम का निजाम हो जावे, और वो हमारे जैसा, जैसे ये माहौल बना है ऐसा उस बस्ती का माहौल बनाने के लिए अल्लाह पाक हमें और आपको जरिया बना दे। बम्बई में सबसे पहली जमात मौलाना सईद अहमद सईद खान साहब की गई थी, वो कब्रिस्तान में ठहरे थे, माहौल नहीं था, लेकिन मेहनत की, मेहनत की। आज बम्बई की तमाम मस्जिदें 4-4 मालों की है और सब मस्जिदें फुल हो रही। हमारा नवसारी पहले बंजर होगा, अरे बोलो, अलीपुर पहले बंजर होगा, लेकिन मेहनत हुई, आज माशाल्लाह मदारिस हो गए, हाफिज कुरान हो गए। हमारी रानी दलाव की मस्जिद पहले बंजर थी, आज हमारी मस्जिद में 80 हाफिज कुरान है। तो ये अल्लाह पाक मेहनत के बाद माहौल को बनाते। हमारे मजमा भी नियत करो, इंशाल्लाह मशवरे से हमारा जो भी तय होगा, लेकिन हम एक गांव, एक बस्ती, 2 बस्ती लेंगे और पूरी मेहनत का मैदान बनाकर वहां पर काम की फिजा को आम करेंगे। करोगे? कौन कौन करेगा? सभी करेंगे। तो फिर एक काम करो, हल्के वाइज आप लोग बैठ जाओ और हर आदमी ये तय करे कि इंशाल्लाह मैं इस गांव को लेऊंगा, आप अपनी तजवीज लिख लो, और आप अपनी मस्जिद व जमात को साथ में रखना, कभी 2, कभी 4, कभी 6 जितने भी आगे जैसे तक आ जा, और पूरी मेहनत करके वहां के माहौल को तैयार कर लेना। करोगे इंशाल्लाह? तो हर हल्के वाले बैठ जाओ और हल्के वाइज अपने देहात को तजवीज करो और इसको फिर मशवरे वालों के सामने रख दो, फिर आपके लिए जो तय हो जावे। हमारी 3 दिन की जमातें वहां जावे। आज हमारा माहौल क्या है कि भाई 3 दिन की जमात ऐसी मस्जिदों में जाएगी जहां माहौल है, ऐसा ना करें। ये जो बस्तियां है गैर मानो जहां मस्जिद मदरसे नहीं है, 4 मकान 6 मकान, वहां टेंट लेकर जावे। ये हमारी दोनों जमातें टेंट लेकर गई थी, जरूरत नहीं थी, तो मस्जिदों में थी। हर मस्जिद वाले टेंट बना लो, जब आपके पास टेंट होगा ना तो आप उन बस्तियों को मेहनत का मैदान बनाओगे। एक तो ये कि हमारी 3 दिन की जमातें कहाँ जाएगी बोलो, ये इलाकों में, मानुस मस्जिदों में, वो तो हमारी बाहर की मेहमान जमात को ठहरा दो। हमारी 3 दिन की जमात ऐसी जगह जहाँ मस्जिद मदरसा ना हो, या मस्जिद मदरसा है लेकिन माहौल नहीं है, जहाँ गैर मानुस इलाका है, या मस्जिद मदरसा नहीं है तो टेंट लेकर चले जाओ। ये नियत करके हमारी अगर एक साल आप मेहनत करोगे ना, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। और दूसरा आपका जो दूसरा गश्त है, अभी तो आपका गश्त दूसरा कहाँ होता है, मस्जिदों में होता है ना, वो भी जहाँ मस्जिदवार जमात बनी हुई है, ये तय कर लो कि हमारा दूसरा गश्त वहां नहीं होगा। दूसरा गश्त कहाँ होगा, जहाँ ऐसी गैर मानुष बस्तियां हैं, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। बाजे हमारे गुजरात के इलाके दूसरे गश्त के लिए 80 किलोमीटर दूर जाते हैं। हम कम से कम इतना नहीं जा सकते, 2-5-10 किलोमीटर हमारे अतराफ की बस्तियां, जहाँ 5 घर, 4 घर, 6 घर मुसलमानों के, वहां जाकर हफ्ते में 1-2 मरतबा 2.5 घंटे भी वहां लगे, दूसरा गश्त भी वहां हो और उस बस्ती को खड़ा करना। फिर जब हमारी 3 दिन की जमात जाएगी तो वो मानुस शहर होंगे, फिर ये जोन की जमात जाएगी तो माशाल्लाह एकदम मानुस हो जाएंगे और एक साल के अंदर अंदर पूरा एक माहौल हमवार हो जाएगा। तो करोगे सब, करोगे तो हल्के भाई जरा खड़े हो जाओ। कौन कौन सा हल्का है, है? भाई मखदुमपुरा वाले आ जाओ जल्दी से। चलो और दूसरा हल्का बोलो, मोठवार वाले आ जाओ और कागदीवार आ जाओ। माशाल्लाह, अपने अपने थोड़ी देर बैठ के जाना, माशाल्लाह। और उसको सोच समझ कर अच्छी